ॐ शांति। सभी बहनों और भाइयों को 2017 के समाप्ति और 2018 के आगमन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज के दिन विशेष हम सब भाग्यशाली बाबा के बच्चे वर्ष का अंतिम दिन शांतिवन में अथवा मधुबन में बिताएंगे तो क्या बन जाएंगे? मधुबन में रहने वाले कौन होते हैं, कौन होते हैं? मधुबन में रहने वाले गोप गोपियां होते हैं। तो सभी क्या हैं, गोपियां और गोप हैं या कुछ और हैं, फरिश्ते हैं? दोनों में से क्या है आप? आज की मुरली अनुसार क्या है, याद है क्या? मुरली भी ऐसी जो कितने साल पहले की मुरली, सोचिए, सन 82 की मुरली, अव्यक्त मुरली। पैंतीस 36 साल हो गए उसको, लेकिन 35-36 साल के बाद आज भी जब मुरली सुन रहे थे या पढ़ रहे थे तो क्या लगा आपको? जैसे आज ही हम लोगों को बाबा सन्मुख देख करके फिर से याद दिला रहे हैं। तो इतने वर्ष बीत गए, जब पहले ये मुरली सुनी तब से लेकर के आज तक, थोड़ा सो अवलोकन किया जाए कि हमने जो इतने वर्ष यात्रा की है, इस यात्रा में हमने कहाँ तक अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है? ख्याल में आता है? ये जरूर है, एक दो को देखते हैं, स्थूल रूप से देखते हैं तो परिवर्तन तो है, किसी के बाल सफेद हो गए हैं, किसी के बाल झड़ गए हैं, किसी का चश्मा लग गया है। क्या ये सब किस चीज की निशानी है? ये निशानी है अनुभवी बनने की। जब शुरुआत होती है बहुत उमंग होता है, बहुत रेस में तेज भागने का मन होता है, तो देखना है कि जिस रेस में भागना शुरू किया हमने उसमें कहीं धीरे धीरे थक तो नहीं गए? हाँ, जो थक गए जरा हाथ तो खड़ा करो। नहीं, अभी भी तेज भागने का मन है। वैसे रेस के अंदर तो जो लंबी रेस होती है उसमें जब भागना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा दौड़ते हैं वार्म अप होने के लिए, और जैसे जैसे लक्ष्य सामने आता है तो थोड़ा तेज भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से इस ईश्वरी जीवन की जो दौड़ है उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना इसी जीवन के अंदर। संपूर्ण स्थिति का भाव क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण। तो ये सभी बातें इसी जीवन में आ जाएं, वो अपना मीटर देखना पड़ता है कितने तक पहुंचे हैं। और उसमें भी जो बहन जी ने याद दिलाया, साकार बाबा जो हम सब के सामने ऐसी मिसाल कायम कर गए, उनके वो 18 जनवरी ১৯৬৯ के महावाक्य अपने लक्ष्य को बहुत क्लियर बाबा ने सुना दिया, निराकारी सिमृति, निर्विकारी कर्म, निरहंकारी सोच विचार, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ऐसी स्थिति बनाना कभी कभी प्रश्न उठता है। हम अभी इतने वर्षों से बाबा के बने हैं, अब हमें क्या करना है? तो बाबा का जो फाइनल स्थूल रूप से शरीर में होते हुए जो जिस स्थिति तक पहुंचे, जिसको बाबा की संपन्न स्वरूप की स्थिति कहें, ऐसे संपन्न स्वरूप की स्थिति तक पहुंचने में हमें अभी क्या करना बाकी है, थोड़ा सोचने की बात है। जब तक कोई सामने मिसाल ना हो तब तक व्यक्ति सोचता है क्या करूं कैसे करूं। तो बाबा ने अपना मिसाल हम सब के सामने कायम किया, एक शिव बाबा के साथ ऐसा प्यार का, समीपता का संबंध उन्होंने रखा। केवल उस समय नहीं, जब शिव बाबा उनके तन में प्रवेश करते, बल्कि ऐसा उन्होंने अभ्यास ऐसा किया हम सबके सामने, जिससे मालूम पड़ता था कि या तो शिव बाबा हमारे बिल्कुल सन्मुख है, या तो ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में नहीं है, वो वतन में है। और वतन में किसके पास होगा? तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में इतनी दोस्ती कहो, इतनी समीपता कहो, वो हम बच्चों ने प्रैक्टिकल देखी। बाबा ने अपने लक्ष्य को बड़ा स्पष्ट अपने सामने रखा हुआ था कि संपूर्ण इसी जीवन में बनना है, और संपूर्णता का उनका मापदंड क्या था जो अभी बताया। एक तो मन तक संपूर्ण निर्विकारी, कोई एक भी पांच विकारों में से कोई एक भी विकार का संकल्प तक न रहे, दूसरा निरंतर बाबा के संग का रंग लगता रहे, याद के द्वारा, जिसको बाबा ने याद की यात्रा शब्द दिया। सोचने की बात है, याद तो करना होता है, पर बाबा ने याद की यात्रा शब्द क्यों कहा? यात्रा इसीलिए कहा कि याद के बल से आत्मा पावन बनती जाए। संपूर्ण पावन बनने तक यात्रा सफल नहीं। जब संपूर्ण बन जाएं, संपूर्ण पावन बन जाएं, बाबा के रोम रोम से, बाबा के नैनों से, बाबा के मस्तक से, ऐसा परकंपन महसूस होते थे, उनके पास बैठने से इतना शक्तिशाली वो परकंपन होते कि हम भी उसमें मगन हो जाते, उड़ जाते। अगर बाबा वतन में तो हम भी वतन में चले जाते साथ में, बाबा दृष्टि देते तो एकदम उड़ा देते। इतना बाबा का बाबा के साथ जिगरी स्नेह भी था और समीपता भी थी। कभी कभी तो ऐसा होता था बाबा हंसी में भी, भोजन के समय शिव बाबा को आमंत्रित करते थे, बाबा आकर के मुझे आप भोजन कराओ। कभी आपने किया है ऐसे? आप कराते हो बाबा को भोजन, कभी आपने ऐसा नहीं किया होगा कि बाबा आप आकर के मुझे खिलाओ। तो बाबा की समीपता कैसे हम लोगों को मालूम पड़ती थी? एक तो याद की यात्रा जो शब्द दिया, तो यात्रा में एक लक्ष्य होता है, कहां से चलते हैं, कहां पहुंचना है। तो बाबा ने याद की यात्रा का लक्ष्य दिया कि जितना याद में बाबा के साथ मन लगाएंगे उतना बाप समान बनते जाएंगे, और वो बाबा ने खुद करके दिखाया। हम बाबा से जब पहले पहले मिले तो उस समय था कि बच्चे जब आप याद करते हो तो शिव बाबा सन्मुख आके मिलते हैं, नहीं तो ये बाबा को अपना पुरुषार्थ करना होता है। और वो देखने में भी आता था। जिस समय हम बाबा के सन्मुख बैठे, बाबा के नैनों में चेंज, बाबा के होंठों पे मुस्कान, अद्भुत मुस्कान, और बाबा के तरफ से इतना प्यार की दृष्टि, और जब से बाबा नहीं है वहां, साकार में बाबा स्वयं में है, तो उस समय बाबा का स्वरूप थोड़ा चेंज होता था। लेकिन जैसे बताया, याद की यात्रा, बाबा के साथ मन लगाते लगाते ब्रह्मा बाबा ने धीरे धीरे शिव बाबा की समानता का लक्ष्य प्राप्त किया। ऐसी स्थिति लास्ट के 2-3 साल हम लोग देखते रहे कि कोई दोनों में अंतर न रहा। निरंतर बाबा का मन शिव बाबा के साथ लगा हुआ और शिव बाबा निरंतर ब्रह्मा बाबा के संग में दृष्टि देने के लिए एवर रेडी जैसे रहते हो। लेकिन उसके फलस्वरूप कर्म में क्या परिवर्तन आया वो भी देखने की बात थी। हम लोग बाहर से, कभी बॉम्बे से या किसी और स्थान से, ईश्वरी सेवा का पाठ बजाते बजाते बाबा के पास आते थे, कोई नई सेवा के प्रोग्राम, क्या कहें, प्लान्स लेकर के आते बाबा से डिस्कस करने, या अपनी अवस्था के बारे बाबा से बात करने के लिए जाते, तो जो शुरू में बाबा से, जो 10 साल हमने साथ में बिताए, उसमें जो शुरुआत के वर्ष थे 2-3, वो ऐसा समय था जिस समय बाबा हर एक बात डिटेल में सुनते थे और फिर उसके साथ अपने विचार जो भी बाबा ने देने हो देते थे। लेकिन बाबा की याद की यात्रा का जो लक्ष्य था, उसको हमने देखा कि धीरे धीरे जो समय थोड़ा भी उनके पास, सब बातों से मन हटा के वो साइलेंस में बैठ जाते थे, या तो साइलेंस में पैदल करते थे। शुरुआत के वर्षों में हमने बाबा के साथ खेल भी खेले, भोजन भी साथ में किया, ब्रह्मा भोजन भी किया, बैडमिंटन भी खेली, सब कुछ। लेकिन उस समय भी बाबा का स्वरूप देखते थे, कैसे शिव बाबा के साथ मन लगा के बाबा अपना पाठ बजा रहे। हम लोगों का बचपन था, हंसते थे, खेलते थे, बाबा की तरह उस समय मन सदा स्थित रहे ऐसा नहीं होता था। लेकिन बाबा, हम बच्चों को बहुत प्यार से कहते थे, बच्चे अपना चार्ट लिखो। चार्ट लिखने से आपको पता चलेगा सारे दिन में कितना समय आपने सचमुच बाबा के साथ बिताया मन ही मन में, और उसमें भी लक्ष्य देते थे लक्ष्य शुरू से हम सुनते आए और जब नोट करते थे तो देखते थे उस लक्ष्य तक तो हम पहुंच नहीं पाए अभी तक। बाबा का लक्ष्य बड़ा बहुत सीधा सिंपल था, उसे 8 घंटे आप भले आराम करो, 8 घंटे अपनी कारोबार करो, लेकिन बाकी 8 घंटे जो हैं वो शिव बाबा के साथ मन लगा करके ईश्वरी ज्ञान का भले अध्ययन करो, तपस्या करो, सेवा करो, लेकिन वो 8 घंटे ईश्वरी कार्य के लिए होने चाहिए। और उसमें भी देखा कि जैसे जैसे समय बीतता गया और बाबा ने मनसा सेवा की बात उसको हाईलाइट किया, मैग्नीफाई करके हाईलाइट किया, ऐसा मैं बोलूंगा कि दूर बैठे भी बाबा कैसे बच्चों को हेल्प करता है, बच्चों को साक्षात्कार करा देता है और बच्चों तक, जैसे उस समय विदेश के भाई बहने कोई इतने नहीं आ, कोई भी नहीं थे विदेश में, जैसे आज की मुरली में था जयंती बहन और उनके माता पिता, वो लंदन में थे उस समय। वैसे ही एक जयंती बहन की फ्रेंड ज्योति बहन, उनके माता पिता कैम्बोडिया में थे, तो बाबा उस समय भी सिर्फ भारत के बच्चों को यहां पर दृष्टि दे, यहां पर वाइब्रेशन दे, नहीं, विश्व के कोने कोने में जो बच्चे बाबा के बनने वाले हैं उनको उस समय बाबा ने अपना योग का सहयोग दिया, वो वाइब्रेशन उस समय चारों तरफ फैलाते रहे, उसका उनका आवाहन करते रहे। आप देखेंगे किसी किसी मुरली में बाबा ने बहुत साकार मुरली में भी उन बच्चों को याद किया हुआ है, उनका आह्वान किया हुआ है, और खास कि ये संदेश, ये जो ज्ञान है ईश्वरी ज्ञान के जो चित्र हैं, त्रिमूर्ति, गोला, कल्पवृक्ष, ये देश विदेश में जाने चाहिए, सभी आत्माओं के लिए ये संदेश है, सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं है, लेकिन सब देशों के बाबा के बच्चे जो भी हैं, जो भी आत्माएं हैं, सबका हक बनता है। तो बाबा की याद की यात्रा को सामने रखते हुए मैं सोचता रहता हूं कि बाबा ने लास्ट में, जैसे हम बच्चों को कहते थे 8 घंटा योग करना है, तो बाबा खुद बैठ करके बीच बीच में इतने तक अभ्यास करते रहते थे जो 8 घंटा सारे दिन में हो जाए, और उसके कारण बाबा को देखते थे शरीर में होते भी बाबा जैसे शरीर में नहीं है, फरिश्ता स्वरूप में है। हम लोग बाहर से सेवाएं करके जब बाबा के पास जाते, सेवा समाचार पहले बाबा इतना रुचि से सुनते थे, जैसे जैसे बाबा अपनी संपूर्ण स्थिति की तरफ नजदीक पहुंचते जा रहे थे, तो बाबा को जब हम कोई बात सुनाने के लिए बैठते तो बाबा बड़े प्यार से पहले तो दृष्टि दे करके आत्मा को एकदम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा देते और फिर कहते बच्चे हाँ सुनाओ। सुनाने के समय हमने देखा जो पहले हम 10 मिनट में बात सुनाएंगे कोई या 15 मिनट में समाचार सुनाएंगे, बाबा एक दो मिनट सुनने के बाद कह देते थे हाँ बच्चे बाबा समझ गया, बाबा ने समझ लिया। और उसके बाद हम कहेंगे बाबा अभी तो मैंने शुरू किया है। नहीं बच्चे, बाबा ने समझ लिया बस, और फिर दृष्टि देना शुरू कर देते थे। ऐसा बाबा का स्वरूप देख करके मन में आता है कि हम लोग सारे दिन में जितना वाचा में रहते हैं तो बाबा की याद की यात्रा के अनुसार हम बाबा के समीप कब पहुंचेंगे, इसका तो बहुत अभ्यास चाहिए। और खासकर जो कारोबार में रहते हैं, हमारी बहनें जो सेवाओं में रहती हैं, सारा दिन वाचा की सेवा ज्यादा होती है, तपस्या जितनी होनी चाहिए वो कम होती है। तो आज जब हम वर्ष का तो अंतिम दिवस मना ही रहे हैं और कल आने वाला नया वर्ष का दिन होगा, लेकिन उसके साथ में सभी जानते हैं कि जनवरी मास विशेष मास होता है ब्राह्मण परिवार के लिए, क्योंकि 18 जनवरी बाबा का दिन संपूर्णता का दिन, जो बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया वो दिन हम लोग मनाते हैं। देखिए आप दुनिया के अंदर जो भी जिसका भी दिन मनाते हैं उसका जन्मदिन मनाते हैं, और ईश्वरी परिवार में ये प्रथा बिल्कुल दूसरी साइड है। साकार बाबा ने जब अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया तो वो स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दादी जी ने जब शरीर छोड़ा उनका स्मृति दिवस मनाते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि हम अपने इस लक्ष्य को कहां तक पहुंच पाए हैं, बाबा की तरह हमारा जीवन कहां तक फरिश्तों के समान बना है। बाबा को देखते थे, कोई भी देखता था, पहली बार भी उनसे मिलने वाले, कोई परिचय नहीं पहले, तो भी उनको देखते हुए बस फरिश्ता ही नजर आते थे। और फरिश्ते क्या करते हैं सभी जानते हैं, तो बाबा किसी को भी दृष्टि दें, दो शब्द ज्ञान के सुना करके, बिल्कुल नए भाई बहनों को हमने देखा उनके सामने आते, उसी समय लक्ष्य दे करके ब्राह्मण जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है पवित्र जीवन का, बाबा उनसे उसी समय प्रतिज्ञा करा लेते थे। बच्चे पवित्र रहेंगे, अगर पवित्र रहेंगे तो बाबा तुम्हें राखी बांधेंगे। पहले वायदा लेकर के फिर राखी बांध देते थे। और देखा गया कि जिन्होंने इस तरह से बाबा से प्रतिज्ञा की, आज जीवन पवित्र जीवन में रहे और पवित्र जीवन में रहने के फलस्वरूप उनका जीवन सफल हो गया। ऐसा मैं तो मानता हूं कि वो बाबा की आज्ञा पर चलने के कारण सफल हो गए। तो बाबा के शब्द कानों में गूंजते हैं कि बच्चे आज्ञाकारी बनो, निरंतर योगी बनो, निरंतर बाबा के साथ अपना प्यार का संबंध स्मृति में रखो, सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ो। उसकी निशानी भी है, भारत में सबसे श्रेष्ठ कौन सा शास्त्र है? हाँ, सभी जानते हैं ना, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जिसको साकार बाबा हमेशा अपने साथ रखते थे, ट्रैवलिंग भी करेंगे, ट्रेन में भी जाएंगे कहीं तो अपने साथ रखते थे। श्रीमद् भागवत गीता को आज भी कोई खोल करके देखे तो पहले स्टार्टिंग में संबंध क्या बताए हैं, तमेव माताश्च पिता तमेव। तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम देव देव। सभी संबंध उनके साथ है। ऐसा अपने दिल से पूछे हम, क्या सचमुच हमने, अभी सभी जानते तो है ना गीता किसने सुनाई थी, सच्ची गीता कहो, श्रीमद् भगवत गीता कहो, भगवान ने सुनाई थी। तो भगवान तो एक ही है, वो एक निराकार है और उस निराकार के साथ सर्व संबंध का जो सुख है, जिन्होंने साकार के द्वारा प्राप्त किया, वो अपने अनुभव जब सुनाते हैं तो सबको बहुत आनंद आता है। मन ही मन में अगर बाबा के साथ इतना नजदीक का संबंध जोड़ लें तो बाप समान बनना इजी लगेगा आपको। और बाबा ने आज दिन तक देखो मुरलियां कितनी चलाई हैं, साकार में भी चलाई जो रिपीट हो रही हैं, अव्यक्त में भी इतनी चलाई है, और हर मुरली में लक्ष्य क्या दिया, बच्चे बाप समान बनो। उसके नीचे का स्तर का लक्ष्य ही नहीं दिया, इतना ऊंचा लक्ष्य दे दिया। तो मैं सोचता हूं अगर हम बाबा की जीवन कहानी को ही अपने सामने रखें, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को, तो कैसे बाबा ने अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचाया। जब बिजनेस में थे तो बादशाह की तरह जैसे, लेकिन फिर जब परमात्मा के इशारे अनुसार, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार निमित्त बन गए, समर्पित हो गए, तो मैं सोच रहा था देखो दुनिया के अंदर कोई संन्यास लेता है तो पहले अपना सब कुछ बच्चों को सबको बांट देता है, लेकिन बाबा ने देखा कि नहीं, ये तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, मनुष्य को देवता बनाने वाला ज्ञान है, नर को श्री नारायण बनाने वाला ज्ञान है, नारी को श्री लक्ष्मी बनाने वाला ज्ञान है, तो चैरिटी शुड बिगिन एट होम। बाबा ने अपने बच्चों को धन दे के अलग नहीं किया, लेकिन ओम मंडली की शुरुआत जब हुई तो बच्चों सहित बाबा उसमें समर्पित हुए। ऐसा कभी मिसाल देखा अपने दुनिया के अंदर? देखा है? नहीं देखा है। आप भाई बहने भी आप बाल बच्चों वाले सामने बैठे हैं, सोचिए यज्ञ की सेवा के लिए जरूर दिल व जान से करते हैं, लेकिन बच्चों सहित जैसे आप इतना सेवा कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, बच्चों को आपने ऐसा लगाया किसी को? तो फॉलो फादर करना, कई बातों में मैं सोचता रहता हूं, हम कह तो देते हैं फॉलो फादर, पर फॉलो फादर में क्या क्या समाया हुआ है, कितनी गहराई समाई हुई है। बाबा की तरह अवश्य हमें ख्याल आना चाहिए, चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपने नजदीक जो हैं, अपने नजदीक के जो बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा हमको पहले करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए उसके तो भिन्न भिन्न तरीके हैं, लेकिन बाबा ने खास हम बच्चों को दोनों साइड, एक तरफ ये संसार असार संसार है, कलयुग का अंतिम समय है, परिवर्तन का समय है, तो इससे ममत्व निकालो, इसमें लिप्त नहीं रहना है, इससे डिटैच होना है, इससे निर्मोही बनना है। और फिर इसके साथ में बाबा के सामने हमेशा वो दृश्य आते रहते थे कि बस अभी जा करके मैं श्री कृष्ण का छोटा स्वरूप जो है ऐसा बनने वाला हूं, और बाबा बहुत उसमें खुशियों में, जैसे बहुत खुशी में देखने में आते थे। अब आप सोचिए सारे दिन में आप कितने खुशी में आते हैं, आते हैं? तो आज विशेष दिन इसीलिए भी है कि 18 जनवरी शुरू, 18 जनवरी का दिन नजदीक आएगा, तो सारा जनवरी मास ब्राह्मण जीवन में हरेक सेवा केंद्र के भाई बहनों के लिए विशेष तपस्या का महीना होता है। तो तपस्या का भाव याद भी है, तपस्या का भाव त्याग भी है, तपस्या का भाव बाबा के कदम पर कदम रख के चलने का भी है। फॉलो फादर करने की जरूरत है। बाबा कहते थे अच्छा भाई फॉलो फादर करें तो बहनें फॉलो मदर करें। मम्मा बाबा को फॉलो करो। मम्मा की भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मम्मा ने भी जब अपना जीवन यज्ञ में समर्पित किया, तब से लेकर के कलयुगी दुनिया की बातों से संकल्प तक उसका त्याग कर दिया था। बिल्कुल उसमें कोई रुचि नहीं। कारण ईश्वरी ज्ञान का जो सच्चा सुख है वो उनके सामने नजर आ गया, उसका उन्होंने अभ्यास करके वो अनुभव प्राप्त किया, और मम्मा के साथ में बड़ी दादियां, आज जानकी दादी को भी अव्यक्त बाबा ने खास याद किया, जाकर के विदेश में सेवा की उन्होंने इतने 40 वर्ष, और आज हम सब के सामने इतनी महान एग्जाम्पल हैं वो। कितनी उम्र है उनकी? हाँ, कल उनका बर्थडे मनाएंगे, 102 साल की हो जाएंगी। तो बाबा की याद में विशेष जो सेवा करने वाली आत्माएं, उनकी आयु बढ़ती है, बाबा उनकी संभाल करता है। मैं खुद अपना अनुभव देखता हूं, मुझे कितना बाबा ने संभाला है। लेकिन जितना टाइम इस संसार में है, एक लक्ष्य जरूर चाहिए कि हमारा हर श्वास, हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म बाबा के महानतम कार्य विश्व परिवर्तन में जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये बहुत नोट करने की चीज है। विश्व परिवर्तन, किसी एक को भी आपने ज्ञान और योग से गाइड किया, आपको देख करके किसी ने उमंग में आकर के आपको फॉलो किया, तो एक प्रकार से विश्व परिवर्तन में वो आपका बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। जितना हम दूसरों के सामने सेवा का पार्ट बजाते हैं, मैंने देखा उतना स्वयं पर बड़ा ध्यान रहता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को तो सुनाएं, गुस्सा नहीं करना है, ऐसा ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है, और फिर खुद कभी कभी गुस्सा आ जाए, टेंपर लूज हो जाए। बहनों कभी रोना नहीं है, कभी रोना शुरू किया तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी हैं, इन्होंने ज्ञान लिया है, फिर इनके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। बहुत सोच के चलना पड़ता है। आप सोचेंगे नाम तो इसका सहज ज्ञान, सहज राजयोग है, बाबा ने तो कहा बिल्कुल आराम से रहो। सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो, पर आप कभी नोट करके देख लो कितने घंटे आप याद कर किया है कभी 8 घंटा। अगर 8 घंटा रोज याद करें तो क्या प्राप्ति हो जाए उससे, सब बंधन कट जाए, आत्मा बिल्कुल निर्बंधन हो जाए। और जीवन मुक्ति सत्युग की तो बाद में आएगी, इस जीवन में प्रैक्टिकल में जीवन मुक्ति का आनंद आने लगता है। इतना मन खुश रहता है, इतना मन खुश रहता है। प्रैक्टिकल देखा हमने, लेकिन लक्ष्य रखने के बिना वो प्राप्ति नहीं होती है। जैसे बाबा ने लक्ष्य रखा कि मुझे 8 घंटे तपस्या करके ऐसा कर्माती स्थिति को प्राप्त करना है कि बैठे बैठे मुझे शरीर छोड़ना है, ये बाबा का अपना लक्ष्य बाबा ने कभी कभी वर्णन किया था, बाबा से डायरेक्ट सुना हुआ है और प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने। मुरली सुना के शाम के टाइम अपने रूम में जा करके दादी के हाथ में हाथ दे करके, बड़ी दादी के, प्रकाशमणि दादी के, और बैठे बैठे जैसे ट्रांस में जाती हैं बहनें, ऐसे ट्रांस में चले गए। और फिर ये भी है कि जाने के बाद बड़ा क्लियर, पहले जाने से पहले ही बहुत क्लियर था कि बाबा का अव्यक्त रूप, फरिश्ता स्वरूप, वो भी सूक्ष्म वतन में है और वो संपूर्ण स्वरूप है। उस तक पहुंचना है मुझे, और उस तक पहुंचने के बाद क्या कर रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हैं बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों में अपने मुरली के द्वारा ही, अव्यक्त मुरली के द्वारा ही बताया था। पहले तो साकार में, साकार शरीर के लिए मुझे अपने लिए टाइम देना पड़ता था, अब तो सारा ही टाइम बच्चों के लिए है। सारे विश्व के बच्चे जो हैं बाबा उनके पास रोज अमृत वेले, जो हर जगह का अमृत वेला है, सिर्फ भारत का अमृत वेला नहीं, क्योंकि जब भारत में अमृत वेला है तो दूसरी जगह दूसरा टाइम होता है, तो हर स्थान के अमृत वेले बाबा बच्चों के पास चक्कर लगाते हैं। क्यों चक्कर लगाते हैं? तो बाबा हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष रूप से अपनी दृष्टि देते हैं। वो शक्तिशाली दृष्टि जब मिलती है तो आत्माएं उड़ने लगती हैं। तो हम सबको कौन सी कला में जाना है, कौन सी कला है? बाबा ने विशेष कहा है कि सभी बच्चों को अभी समय के अनुसार, इतने वर्षों के पुरुषार्थ के फल स्वरूप, अब लक्ष्य चाहिए उड़ती कला का। उड़ती कला के अनुभव में रहना, वो बाबा की समीपता का अनुभव बहुत कराएगा। ओत परोत है, जितना बाबा के साथ समीप रहेंगे उतना उड़ती कला का आनंद आएगा, और जितना समीपता के स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे उतना और आगे उड़ते उड़ते बाप समान बनते जाएंगे। जब भी जनवरी मास आता है सभी भाई बहने विशेष तपस्या करते हैं, पर तपस्या का लक्ष्य क्या रहे हमारा? लक्ष्य चाहिए कि हमें कल नहीं, आज ही बाप समान बनना है, आज ही ब्रह्मा बाप के समान हमें ऐसा फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचना है। और फरिश्ता स्वरूप तो रिजल्ट है, पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ है? एक टिक होकर के बाबा के साथ मन लगाना, ना इधर जाए ना उधर जाए। जैसे गाड़ी चलाने समय कहते हैं ना, नाक की सीध में चलना है, ऐसे ही याद की यात्रा में भी एक ही अपना लक्ष्य है, शिव बाबा के साथ मन लगा के ब्रह्मा बाप समान बनना है। जैसे बाबा ने फरिश्ता स्वरूप का अपना जीते जी अनुभव किया और हम सब बच्चों को कराया, हमारे पास भी ये लक्ष्य रहे कि हम ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते, अभ्यास करते करते ऐसा ही अपने आप को खुद भी फील करें, और हमारे साथ में भाई बहने जो रहते हैं वो भी महसूस करें कि सचमुच वो भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। दृढ़ संकल्प चाहिए उसके लिए, कभी कभी ऐसा होता है, कभी तबीयत ठीक नहीं होगी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, नींद ठीक नहीं की, तो अमृत वेला मिस हो जाएगा। एक बार मिस होगा तो फिर वो धीरे धीरे, कभी कभी ज्यादा दिन भी हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी का मिसाल ऐसा देखा है, कितना भी बिजी रहें, कितना भी तबीयत कैसे भी हो, लेकिन वो बाबा का जो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट का टाइम है सुबह का, अमृत वेले बाबा बच्चों से खास मिलते हैं, अमृत वेले बाबा बच्चों को खास शक्ति देते हैं, अमृत वेले खास बाबा बच्चों को दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं, तो वो मिस ना करें। मिस किया तो फिर क्या होगा अभी सोच लेना, आज अगर मिस किया तो कलप कलप मिस होता रहेगा। फिर कलप कलप की बाजी है, एक दिन की बात नहीं है, इसलिए बहुत बहुत एक्यूरेसी अपने अंदर आनी चाहिए, हमारे हर बात में एक्यूरेसी, सर्वगुण संपन्न अर्थात हर बात में एक्यूरेट, भूले नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भूल भुलैया में पड़ जाएंगे। फिर अगर भूल हो जाएगी तो क्या कहते हैं, भूल भुलैया के खेल में चले जाएंगे। इसलिए अभी भूल भुलैया का खेल बंद और बिल्कुल सीधा तेज रफ्तार से उड़ती कला में जाकर के बाबा के पास, बाबा के समान फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचने का लक्ष्य रखना, ये अभी हमारे पास, उसके लिए हिम्मत भी चाहिए और हिम्मत के साथ पुरुषार्थ भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए। सिर्फ हिम्मत, हिम्मत शब्दों में आ जाती है, पर प्रैक्टिकल पुरुषार्थ भी चाहिए। बड़ी तपस्या है वो, इजी नहीं है, मैं ये जरूर कहूंगा। अपने हर बोल पर ध्यान रखना, अपने हर संकल्प पर ध्यान रखना, अपनी हर नजर पर ध्यान रखना, हर कर्म पर ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है और एक प्रकार से यूं कहेंगे कि हम सारे संसार के सामने ऐसा मिसाल कायम कर रहे हैं कि वास्तव में दिव्य जीवन होती क्या है। दिव्य जीवन परमात्मा पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा कैसे हम बच्चों को सिखा करके ऐसा योग्य बनाते हैं, और हमारी दिव्य जीवन के फलस्वरूप ही इस सृष्टि पर देवी देवताओं का राज स्थापन हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं आप, कितनी महान कार्य के निमित्त हम आप सभी भाई बहनें इस समय अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। देखने में साधारण है सब, पर कार्य असाधारण कर रहे हैं। तो सभी बाबा के साथ इस तरह के कार्य में दिल व जान से, सिक व प्रेम से, सभी हर सेकंड, हर संकल्प, हर दिन ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए जो तैयार हैं, वो हाथ तो खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, अपने लिए ताली बजा लो। अभी थोड़ा टाइम क्या करेंगे, अपनी मनसा के द्वारा बाबा के साथ अभी कुछ समय के लिए बैठें। बहुत ही जिगरी खुशी में आके बैठना है, बहुत प्यार से बाबा को अपने हृदय पटल पर, मन पटल पर थोड़ा सा सामने देख करके। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही शिव बाबा को अनुभव करने के ख्याल से, खास बाबा की याद में, बाबा के संग नैन मुलाकात करते हुए इसी संकल्प से बैठें कि हम बाबा से शक्ति लेते लेते स्वयं को भी संपूर्ण बनाने में गतिशील हैं और सारे विश्व को सच्ची शांति के प्रकंपन देने में भी गतिशील हैं। उसी लक्ष्य को लेकर के मन ही मन में सोचें, हम बाप दादा के फरिश्ता स्वरूप को सामने देखते, स्वयं भी स्थूल देह से न्यारे, फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सन्मुख बाबा के नैनों से वो लाइट और माइट प्राप्त करते हुए अपनी निर्संकल्प अवस्था में फरिश्ता स्वरूप, निर्संकल्प अवस्था, उसको निर्विकल्प समाधि भी बोलते हैं। इस समय के जो आपके स्थिति के जो प्रकंपन है, वो केवल शांतिवन नहीं, सारे विश्व में बल्कि सारे ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं। ऐसी महानतम सेवा के निमित्त आप सभी महान आत्माएं इस समय फरिश्ता स्वरूप में स्थित और भविष्य में सतयुगी देव स्वरूप बनने वाली आत्माएं सारे विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं बाबा के नैनों के नूरे रतन, बाबा के दिल तख्त नशीन और बाबा के माला के अमूल्य रतन, ऐसा अपना सम्मान हमेशा अपने दिल में अपने मन में स्मृति में रखें। और दिल ही दिल में बाबा को प्यार से देखते हुए धन्यवाद देते रहें, बाबा क्या से क्या बना दिया आपने, कहां कहां से हमें ढूंढ करके निकाला है और अपने गले का हार बना दिया है।